मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सचिन मिश्रा, आपका गांव है सकतपुर, जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। सुधीर कुमार, आपका गांव है मानपुर, जिला गया बिहार से। अंकित, आप धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। और गौरव कुमार, आपका गांव है रामनगर, जिला मुजफ्फरपुर बिहार से। तो सचिन, सुधीर, अंकित और गौरव, आप चारों दोस्तों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस बीच आप लोगों ने दूरदर्शन का न्यूज चैनल भी देखा होगा और रेडियो न्यूज भी सुनी होगी। इनफैक्ट कोई खास विशेष बातें उसमें मुझे ऐसी नहीं लगी हैं जिनको लेकर के हम अलग से बात करें। तो आज मैं सीधे ही मुख्य विषय पर आऊंगा और मुख्य विषय के तहत मैं आपसे एक भले ही अलग अंदाज में बहुत ही जाने माने विषय पर बात करने जा रहा हूं और वह विषय है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, मैं इस पर आपसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं। करेक्शन यह है कि इससे पहले मैंने आपसे दल बदल कानून के बारे में बात की थी और उसमें जो दल बदल कानून का जो संविधान संशोधन है, मैं जल्दी में कह लीजिए स्क्रिप्ट नहीं होने से मैं 22वां बोल गया था, यह मुझे स्टूडेंट्स के ईमेल के जरिए पता लगा है। तो मित्रों, आप उसे करेक्ट कर लें, वो 52वां संविधान संशोधन विधेयक था जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 22वां संविधान संशोधन नहीं, 52वां संविधान संशोधन विधेयक, राइट। अब मैं सीधे सीधे अपने आज के मुख्य विषय पर आता हूं और मुख्य विषय के तहत मैं बात करने जा रहा हूं लोकतंत्र के मायने। सबसे पहले मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि मैं लगभग लगभग 1.5 घंटे की क्लास सिर्फ ये बताने में लगाता हूं कि लोकतंत्र के मायने क्या हैं। और फ्रेंड्स, चूंकि आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशली आप सबको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको लोकतंत्र को सिर्फ एक परिभाषा के रूप में नहीं जानना है कि बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। वो तो एक आप यूं कह लीजिए कि एक सैद्धांतिक डेफिनेशन है। आपको इसे रियल सेंस में समझना है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या मतदान करके सरकार चुन लेना यह लोकतंत्र है? क्या जब हम एक बार वोट डाल देते हैं और वोट डालने के बाद हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते? क्या वोट डालने के बाद 5 साल के लिए हमारे हाथ बिल्कुल कट जाते हैं और हम पूरी तरह से जिन प्रतिनिधियों का हमने चुनाव किया है, क्या हमारी पूरी की पूरी जिंदगी या कह लीजिए 5 साल की वह जिंदगी केवल उनके रहमो करम पर निर्भर होती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं बीच में ऐसे बहुत से अवसर आते, हर समय ऐसे अवसर आते रहते हैं, या कह लीजिए कि हमारे पास रहते ही हैं, आप हमें अवसर की भी प्रतीक्षा नहीं करनी होती जब हम सही मायने में एक लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम जानते नहीं है कि लोकतंत्र वस्तुतः होता क्या है, इसीलिए हम चुनाव को ही, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इसे ही लोकतंत्र मानकर बैठ जाते हैं। मैं आपको 2 घटनाएं बहुत ही लेटेस्ट बता रहा हूं दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए ताकि जब एग्जामिनेशन में कोई बात पूछी जाए तो आप इनका उल्लेख करके दूसरों की तुलना में अपने को एक ज्यादा अलर्ट स्टूडेंट साबित कर सकें। आज के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में हमारे जो वित्त मंत्री जेटली जी हैं उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है। उस इंटरव्यू में जेटली जी को कोट करते हुए लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता, बिल्कुल ज्यों के त्यों शब्द, अगर नौकरियां नहीं होती तो देश भर में असंतोष होता, फिर 5 साल बिना आंदोलन के कैसे निकल पाते। इंटरव्यू करने वाले व्यक्ति ने यह उनसे पूछा था कि कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है, 45 साल में इतनी बेरोजगारी की स्थिति कभी नहीं आई, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रोजगार बड़ा मुद्दा है, तो इस पर देखिए वित्त मंत्री जी क्या कह रहे हैं। मंत्री जी अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो लोकतंत्र को परिभाषित कर रहे हैं। मैं राजनेता के वक्तव्य के तौर पर कोई चुनावी रणनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल लोकतंत्र को समझाने की दृष्टि से इसकी बात कर रहा हूं। देखिए वो कहते हैं कि अगर नौकरियां नहीं होती तो देश भर में असंतोष होता। दूसरा कह रहे हैं, फिर 5 साल बिना आंदोलन के कैसे निकल पाते? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सत्ता में हम 5 साल तक रहे हैं, ठीक है, हम राज्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में किसी चीज को लेकर असंतोष है, कुछ आप चाहते हैं, सरकार से आप खुश नहीं हैं, तो आप उसे व्यक्त कीजिए। देश भर में असंतोष होता, असंतोष हमें बताइए, व्यक्त कीजिए। व्यक्त करने के क्या तरीके हो सकते हैं? चलिए, व्यक्त करने के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत से तरीके हैं, अखबार हो सकता है और दूसरी चीजें हो सकती है, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दी, फिर 5 साल बिना आंदोलन के कैसे निकल पाते हैं? इसका मतलब है कि अगर रोजगार की स्थिति बहुत खराब थी और इससे लोग बहुत परेशान थे, तो उनको चाहिए था कि वो आंदोलन करते, और जब वो आंदोलन करते तब हमें पता चलता कि नहीं, रोजगार के कारण लोगों में बड़ा, बेरोजगारी के कारण लोगों में बड़ा असंतोष है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सरकार सतर्क होती, सरकार कुछ करती, सरकार को पता लगता। तो अब आप देखिए कि यहां जो बात कही गई, आंदोलन का अधिकार, असंतोष को व्यक्त करने का अधिकार, जो याद रखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में बकायदे दिए हुए हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सही मायने में लोकतांत्रिक अधिकार है? यही ये बताते हैं कि आप लोकतंत्र में हैं। तो अब आप देखिए कि समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, जैसे कि आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए, अलग अलग तरीके से आंदोलन हुए, और आरक्षण के हुए आंदोलनों को हम अलग अलग तरीके से व्याख्यायित भी करते हैं कि संविधान में अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो लोग बेकार मांग रहे हैं, बेकार ये कर रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आरक्षण से संबंधित आंदोलन होते थे और फिर जब एडिटोरियल लिखे जाते थे, तो हमेशा एक बात कही जाती थी कि भैया ये जो आंदोलन है, ये मूलतः आरक्षण को लेकर के उतना नहीं है जितना कि बेरोजगारी को लेकर के है, क्योंकि लोग अब बेरोजगार हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आरक्षण इसका हल हो। तो वो डायरेक्ट बेरोजगारी पर तो आंदोलन नहीं हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी के कारण जो जनता में असंतोष पनप रहा था, उसी की अभिव्यक्ति है। तो आप आंदोलन को एक बहुत बड़ा अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार मान करके चलिए, जो बकायदे आपको नागरिक के रूप में हर समय दिया गया है, उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं एक दूसरी घटना पर आता हूं, यह भी आपको हो सकता है कि कल परसों के अखबार में ही पढ़ने को मिला हो। दोस्तों तेलंगाना जो स्टेट है, तेलंगाना स्टेट की एक घटना है, कल शायद अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि वहां एक लोकसभा क्षेत्र है और निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र है, तो उस निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में इतने ज्यादा लोगों ने एमपी के चुनाव के लिए आवेदन नामांकन किया है कि वहां हमारी जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं करेगी, वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। मतलब ईवीएम मशीन में उतनी क्षमता नहीं है कि वो 178 उम्मीदवारों के नामों को शामिल कर सके, यानी कि पूरे देश में जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो मशीन से कराए जा रहे हैं। इस मायने में जो निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र है, इतिहास रचने जा रहा है कि वहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि इससे पहले चंद्रशेखर राव जी ने विधानसभा चुनाव यहां 2/3 बहुमत से जीता था, 2/3 बहुमत से जीता था। फिर ये तो विधानसभा की बात है, फिर उनकी जो बेटी है जिनका नाम है कविता, वो यहां से लोकसभा चुनाव जीत कर पहुंची निजामाबाद क्षेत्र से, कविता। उस समय उन्होंने किसानों से कुछ वायदा किया होगा, राइट, कि मैं अगर चुनी जाती हूं तो मैं ये करूंगी। अब ये जो 178 है जो नामांकन है, ये 178 किसान है, किसानों ने नामांकन दाखिल किया है, और मालूम है किस लिए नामांकन दाखिल किया है, कि ये जो किसान हैं वो इस बात से नाराज हैं कि कविता जी ने बकायदे वायदा किया था कि वो हल्दी उत्पादकों के लिए एक बोर्ड का गठन करेंगी। वहां जो हल्दी पैदा करने वाले जो किसान हैं उनके लिए बकायदे एक बोर्ड बनाएंगी और इसके बाद उस बोर्ड से फिर उनकी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि एक उम्मीदवार ने चुनाव के समय जनता से कुछ वायदे किए, लेकिन 5 साल में वो वायदे पूरे नहीं किए गए और अब हम उसके विरोध में ये काम कर रहे हैं, हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा मित्र, वो हमारे यहां कंसर्न नहीं है। यहां हमारा कंसर्न क्या है, कंसर्न यह है कि जो उम्मीदवार हमारे क्षेत्रों से जो वायदे करते हैं 5 साल के बाद फिर जब वो पुनः मैदान में आते हैं तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए कि जो आपने वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, याद रखिए, तब तक वो अपने ढंग से नई नई घोषणाएं करते रहेंगे और नतीजा क्या होगा, वो भी घोषणाएं पूरी नहीं होंगी और इसी तरह से लगातार 5-5 साल में चुनाव होते चले जाएंगे और जनता फिर अपने को ठगा हुआ महसूस करेगी। तो अब यहां देखिए कि लोकतंत्र के मायने क्या है। लोकतंत्र के मायने हैं कि जनता उनके वायदों के बारे में उनको याद दिलाए, उनसे प्रश्न करे और उसका बिल्कुल संगठनात्मक रूप से विरोध करे। यहां वो किसान संगठनात्मक रूप से विरोध कर रहे हैं और बहुत ही वैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और बहुत ही अहिंसा तपरक तरीके से विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। नो डाउट कि विरोध जब भी हो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जिसमें कोई राष्ट्रीय संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति न हो और जिसमें नागरिक जीवन जरा भी अव्यवस्थित न हो। तो अब आप सोचिए कि अगर जनता हमारी इतनी सतर्क हो जाए तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र कितने सही तरीके से काम करने लगेगा? तो क्या यह अधिकार एक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? क्या अभी मैंने जिस घटना की बात बताई वो एक प्रकार से फिर से हमें हमारे अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं कर रहा है? मित्रों, हमारे उद्देशिका को पढ़िए। उद्देशिका के पहले 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। पूरे संविधान में हम भारत के लोग फैले हुए, पूरे संविधान में उनकी उपस्थिति आपको दिखाई देती है। मित्रों, कभी वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे संविधान में हम भारत के लोगों की मौजूदगी है। फिलहाल चूंकि वक्त हो चला है तो अब मैं अपने मुख्य विषय को मित्रों यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, राहुल सिंह राठौड़ नागपुर महाराष्ट्र से, नीतीश साहनी और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।